मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 7 सितंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे वायदा किया था कि अब मैं आपसे डियर जिंदगी फिल्म जो आई है उसको आधार बनाकर कुछ बातें, मन की बातें यूं कह लीजिए, आपसे शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से जिनके लिए भी संभव हो सका होगा उन्होंने यह फिल्म देखी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जिन्होंने फिल्म देखी होगी बट नेचुरल, वो मेरी बात को दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्वाभाविक भी है मित्रों, जैसे कि मेरे डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लगातार ईमेल आते हैं कि जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं वह इसी डेली ऑडियो लेक्चर को अलग तरीके से समझ पाते हैं, जिन्होंने अटेंड नहीं की हैं डेफिनेटली समझ वो भी पाते हैं लेकिन उनका तरीका, उनकी डेप्थ, उनके डायमेंशंस अलग होते हैं। इस बात को आप इस डियर जिंदगी फिल्म पर जो बातें हो रही हैं उसके उसको आधार बनाकर भी बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि फिल्म देखने के बाद यही बातें किस तरीके से समझ में आ रही हैं, और यदि फिल्म नहीं देखी है तो बातें तो समझ में आ रही हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से समझ में आ रही हैं। तो मित्रों, आइए अब हम डियर जिंदगी पर बातें करते हैं और ये बात केवल एक ही एपिसोड तक असीमित नहीं रहेगी। यदि आप लोगों को ये ठीक लगा तो हो सकता है कि इसे और भी कई एपिसोड तक आगे बढ़ाया जाए, आज कल परसों तक भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो फिल्म है ये अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है जो बेसिकली जिंदगी पर है, और डियर जिंदगी का मतलब ही है प्यारी जिंदगी, प्यारा जीवन। मित्रों, जीवन जैसा भी है निसंदेह रूप से कोई डाउट नहीं कि वह बहुत प्यारा है, बेहद प्यारा है। इसलिए बेहद प्यारा है क्योंकि ये जो जिंदगी है, जब तक ये है तभी तक दूसरी वो सारी चीजें हैं जो मुझे प्यारी हैं, जो आपको प्यारी हैं। जिंदगी ही हमें अपनी उन दूसरी चीजों से जोड़ती है और जैसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है सब चीजें शून्य हो जाती हैं। इसलिए मित्रों, पहली बात मैं आप सबसे जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो ये कि इस जिंदगी की कीमत को समझिए, इसकी खूबसूरती को निहारने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसे महसूस भी करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये जिंदगी इतनी मूल्यवान है, इतनी कीमती है। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए कि मैं दुनिया की सारी दौलत आपको दे दूं और आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हैं, बहुत महान ज्ञानी हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, धार्मिक पुरुष हैं, मतलब दुनिया की जितनी भी अच्छाइयां हैं सब आप में भरी हुई हैं, और मैं आपको सारी दुनिया की दौलत दे देता हूं, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी दे देता हूं और आप जितना वक्त मांगे मैं उतना वक्त भी आपको दे देता हूं, बस मेरा एक काम कर दीजिए और वो काम यह है कि मेरे लिए एक बच्चा गढ़ दीजिए, बस दैट्स ऑल, मुझे एक बच्चा बनाकर दे दीजिए। क्या यह संभव है? और यदि आपका उत्तर नहीं है, जो कि होगा ही, यही वो आपका उत्तर हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल, तो मित्रों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिंदगी कितनी मूल्यवान है। और जो चीज जितनी मूल्यवान होती है उतनी प्यारी होती है। गोल्ड क्यों आपको ज्यादा प्यारा होता है बजाय इसके कि तांबे के, बजाय इसके कि पीतल के? पीतल भी तो पीला है, गोल्ड भी पीला है, लेकिन गोल्ड आपके लिए इसलिए मूल्यवान है, इसलिए ज्यादा प्रिय है क्योंकि वो ज्यादा कीमती है। तो जिंदगी को आप इस तरीके से भी कभी इसके बारे में सोच कर देखिए। जो भी आप अपनी परिस्थितियों को अपनी जिंदगी का गुलाम क्यों बनाते हैं? अगर आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उसे आप अपनी जिंदगी से क्यों जोड़ लेते हैं? जिंदगी अलग चीज है, आपके दुख, आपकी परेशानियां वो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां स्थिर नहीं होती, जिंदगी स्थिर होती है। परिस्थितियां आज है, आज की परिस्थिति कल नहीं रहेगी और कल जो परिस्थिति थी वो आज नहीं है, बदल चुकी है। आप भले ही उसे महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट दैट इज नॉट देयर द सेम, वही चीज नहीं है। माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, गहराई में जाकर देखने की कोशिश कीजिए तो आपको लगेगा कि नहीं, बदल चुकी है, काफी कुछ जिंदगी बदल चुकी है। कल जिस चीज को आप जिस नजरिए से देख रहे थे आज उसी नजरिए से नहीं देख रहे हैं, जबकि चीज तो वही है। तो जब आपकी सोच बदल गई, जो आपका नजर आपके नजरिया बदल गया, तो सीधी सी बात है कि जिंदगी भी बदल गई, चीजें भी बदल गई, परिस्थितियां भी बदल गई, सब कुछ बदल गई, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, नदी बहती रहती है, तट बदलते रहते हैं, कहीं तट चौड़े हो जाते हैं, कहीं सकरे हो जाते हैं, कहीं गहरे हो जाते हैं, कहीं उथले बन जाते हैं, कहीं के तट पक्के के बन जाते हैं, सीढ़ियां बन जाती हैं, कहीं तटों पर तीर्थ लगने लगते हैं, कहीं तटों पर मेला लगने लगता है, लेकिन पानी तो बहता रहता है। मित्रों, मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा यही नजरिया रखना चाहिए। परिस्थितियों का गुलाम, परिस्थितियों का दास अपनी जिंदगी को बना देना, मेरी समझ से हमारी अपनी जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा अत्याचार है। पक्षी उड़ता है, जिंदगी उड़ती है, जिंदगी उड़नी चाहिए, जिंदगी लहलहानी चाहिए। और यह संदेश मित्रों, मुझे लगता है कि डियर जिंदगी में बहुत खूबसूरत तरीके से दिया गया है। नो डाउट कि इस फिल्म का जो केंद्रीय बिंदु है वो मनोवैज्ञानिक समस्या है, किस तरह से हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक पागलपन समझ लेते हैं और डॉक्टर से जाने से बचते हैं, साइकेट्रिक के पास नहीं जाते हैं। तो मेरा संदेश पहले मेरे सभी प्रिय युवाओं और मेरे सभी प्रिय श्रोताओं से है कि जहां भी इस तरह की चीजें महसूस होती हैं, प्लीज गो टू साइकेट्रिक, चाहिए अच्छे साइकेट्रिक हो। आजकल बहुत ही अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, वो दोनों चीजें हैं, या तो आपको समझा बुझाकर वो ठीक करेंगे, जैसे कि इसमें आप देखिए कि शाहरुख खान समझा बुझा करके ठीक करते हैं, तो साइकोथेरेपी है, वो एक तरह का मोटिवेशन है जिससे कि हमारी जो सोच गलत दिशा में जा रही है, जो गलत हो चुकी है, उसे वो सही दिशा में मोड़ देती है। तो पूरे के पूरे जो आलिया भट्ट का जो इलाज है वो साइकोथेरेपी के माध्यम से होता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष मेडिसिन का भी है मित्रों। और मेडिसिन का मतलब सीधा सा है कि देखिए, हमारा दिमाग भी जो है वो हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, जो फिल्म में बताया गया है, वो भी हमारे शरीर का एक अंग है, उसकी भी अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया है। तो हमारे दिमाग में भी जो अलग अलग तरह के जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनका जो आदर्श अनुपात होना चाहिए, उस आदर्श अनुपात में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई केमिकल बढ़ जाता है, कोई घट जाता है, और जैसे ही वो आदर्श अनुपात गड़बड़ होता है, दिमाग का स्वाद बदल जाता है। ये ठीक सब्जी बनाने की तरह है, सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो गई तो सब्जी का स्वाद गड़बड़ हो गया, अगर मिर्च ज्यादा हो गई तो गड़बड़ हो गया, मसाले कम हो गए तो गड़बड़ हो गया। कमाल क्या है, पाक कला का कमाल अनुपात का ही तो कमाल है। यहां तक कि अगर थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा सीख गई तो गड़बड़ हो गया, और थोड़ी कम सीखी तो भी गड़बड़ हो गया। सारा कमाल तो अनुपात का है। दिमाग में भी वही चीजें होती हैं, और दिमाग में जो केमिकल्स के अनुपातों में जो अंतर आता है वो दो तरीके से आता है मित्रों। एक तो नो डाउट बायोलॉजिकल ही प्रॉब्लम होती है, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। हमारे सोचने का भी संबंध हमारे दिमाग मस्तिष्क के केमिकल्स से होता है। जैसे आप देखिए कि जब आपको गुस्सा आता है तो शरीर का पूरा शास्त्र बदल जाता है ना, शरीर कांपने लगेगा, ओंट फड़फड़ाने लगेंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, क्या हो गया, गुस्सा ही तो आया था ना। आपको लगता है कि यार गुस्सा आने पर ऐसा होता नहीं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे दिमाग से हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं एक अलग तरह के रसायन निकलते हैं, वो जहरीले रसायन होते हैं, और वो जहरीले रसायन तत्काल रक्त में मिलकर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं और अपना असर दिखा देते हैं, जहर की तरह है। जैसे जहर अगर कोई खाए तो क्या होता है, पूरे रक्त में प्रवाहित होकर के शरीर को खत्म कर देता है। तो ये उसका कह लीजिए कि जरा सा माइल्ड किस्म का, जरा नर्म किस्म का जहर है, तो वो अपना असर दिखाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी भावनाएं होती हैं, उसी तरह के रसायन हमारे मस्तिष्क में निकलते हैं। जब आपको किसी पर प्रेम उमड़ता है तो आप देखिए, जब आप किसी चीज को देख के रोमांचित हो जाते हैं तब देखिए, रोआ रोआ तक शरीर का खड़ा हो जाता है, शरीर पर छोटे 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 बिंदी बिंदी से पता नहीं क्या उगाते हैं, शरीर सिहरने लगता है। ये प्रमाणित करता है कि इमोशंस के अनुकूल, हमारे विचारों के अनुकूल हमारे मस्तिष्क में रसायनों की उत्पत्ति होती है। एक बायोलॉजिकल होता है, दूसरे हमारे इमोशंस होते हैं। तो मित्रों, इन रसायनों को ठीक करने का जो काम है, साइकोथेरेपी अपनी जगह पर है, काफी कुछ वो भी ठीक कर लेता है, जो इमोशंस और जो थॉट्स का जो पार्ट है, जो भाग है, उसको साइकोथेरेपी ठीक करती है। साइकोथेरेपी का मतलब है समझाया जाना, जैसे कि शाहरुख खान उसमें लगातार उसको समझाते हैं, आलिया भट्ट को समझाते हैं, कायरा को समझाते हैं और कई कई बैठकों में समझाते हैं, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करती है, फिर भी एक जो समझाने वाला व्यक्ति है वो पीछा नहीं छोड़ता, जानता है कि यही तो इसकी प्रॉब्लम है। और इसका जो दूसरा आधार होता है मित्रों, वो होते हैं मेडिसिन। आजकल बहुत ही अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, उन मेडिसिन को लेने पर वो जो रसायनों का जो अनुपात गड़बड़ा गया है वो काफी कुछ ठीक हो जाता है। थोड़े समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और इसके बाद वो रसायन अपने आप में ठीक तरीके से आने लगते हैं और मस्तिष्क की ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। इसलिए मित्रों, किसी को भी अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर करते हुए देख रहे हैं तो एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें गाइड करें कि तुम जाओ और उन साइकेट्रिक को दिखाओ। उसमें बिल्कुल कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि साहब क्या मैं पागल हो गया हूं, लोग मुझे पागल समझने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये स्टिग्मा हमारे समाज में है, एक तरह का ये प्रतिबंध हमारे समाज ने लगा रखा है, लेकिन आफ्टर ऑल दोस्तों उसके तोड़ने की शुरुआत कभी न कभी तो होनी ही चाहिए और मुझे लगता है ये फिल्म उसको तोड़ने की शुरुआत कर रही है। दोस्तों जो युवा है, कितने लोगों को आप देखिए रोज अखबारों में दुर्भाग्य से आपको ये खबर पढ़ने को मिलती है कि उसने फांसी लगा ली, उसने आत्महत्या कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। आपको क्या लगता है कि सच में उनके लिए जिंदगी इतनी दूभर हो गई थी? नॉट एट ऑल, एक क्षणिक आवेश था बस, उस क्षणिक आवेश में कुछ केमिकल्स प्रॉब्लम हो गई थी और उसने उस एक्शन में वो आ गई। जीवन के यथार्थ को वो नहीं समझ रहा है और उसने ये इतना खतरनाक, इतना भयावह कदम उठा लिया। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये इस फिल्म का जो मैसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और अब जिस तरह का समाज दिखाई दे रहा है उसके लिहाज से यह मैसेज सभी तक पहुंचना ही चाहिए। तो मित्रों आज मैंने केवल शुरुआत की है, डियर जिंदगी फिल्म में जो मैसेज है उसको आधार बनाकर कल हम इसके बड़े खूबसूरत, इसका जो मैसेज है, मैं देख रहा हूं कि युवाओं से जब बात होती है तो वो इस मैसेज को बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही अट्रैक्शन के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम हमेशा मुश्किल रास्ता क्यों चुनते हैं जरूरी काम के लिए, क्या पता आसान रास्ते से भी काम हो जाए। मैं कल इसकी बड़ी खूबसूरत व्याख्या अपने अंदाज में आपसे करूंगा और आप फिर अपने व्याख्या अपने ढंग से करिएगा। तो मित्रों इसी के साथ ही आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।